Ladies and gentlemen.
Hi, this is Shilpa Shetty.
I think it's been a phenomenal success. Oh, sorry, let's just take that again.
Hey, chutki sindoor.
Jiska hame khed hai.
Haan, ek minute, le lijiye.
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
प्रियंका जी, अगर आपने वाकई लाल दुपट्टा ही उड़ाया होता तो शायद सोशल मीडिया पर होने वाले ट्रोल से बच जाती। अब आज के इस दौर में भारत के इंडिपेंडेंस डे के मौके पर वेस्टर्न कपड़े पहनकर तिरंगा दुपट्टा लहराया आपने, क्या मतलब है इसका? है भाई, ये भी कोई बात हुई? भक्त लोग सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल न करें तो क्या करें? अगली बार शुद्ध भारतीय अंदाज में यौम आजादी मनाइएगा। ठीक है भाई, परदेश में है तो क्या अब अपनी भारतीय सभ्यता भी भूल जाएंगी? गंदी बात।
लव करूंगा तेरे साथ, गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात।
बात गंदी हो या अच्छी, करनी तो पड़ेगी, है ना? तो आइए करते हैं बॉलीवुड की गंदी गंदी, मेरा मतलब है कुछ खट्टी मीठी बातें।
ओ तेनु सूट सूट करदा, ओ तेनु सूट सूट करदा।
तो मैं हूँ नुसरत जहाँ और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड राउंडअप।
ओ नी तू लगदी पंजाबन, लगदी पटोला, लगे नी तू सारियां तो वख नी, तेनु सूट सूट करदा, ओ तेनु सूट सूट करदा।
सैफ अली खान बताएंगे कि इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है। हुमा कुरैशी से सुनिएगा कि पार्टीशन 1947 उन्हें कैसे मिली। छोटे नवाब यानी सैफ अली खान ने इसी हफ्ते अपनी फैमिली के साथ अपनी 47th बर्थडे मनाई। उनकी बर्थडे से एक दिन पहले ही इंडिया का इंडिपेंडेंस डे था। अब इस मौके पर छोटे नवाब ने आजादी के सही माने बताने की कोशिश की।
लोगों ने अपनी जान दी है ताकि हम फ्री हो सकें, तो इस बात की हमें इज्जत रखनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। और फ्रीडम का मतलब ये है कि हमें एक सेक्युलर कंट्री होना चाहिए यार। ये सब चीज़ें, हम भी बहुत चीज़ें बैन करते हैं। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो, हम भी बैन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम्स को साथ में प्यार से रहना चाहिए, इंडियंस मानना चाहिए हम सबको, साउथ इंडियन या नॉर्थ इंडियन, वन कंट्री सोचना चाहिए। आई थिंक फ्रीडम का मतलब ये है मेरे लिए कि हम एक दूसरे की इज्जत करें।
मुझे एक खास काम सौंपा गया है, मैं हिंदुस्तान का आखिरी वाइसरॉय रहूंगा और मैं बड़े ही फक्र के साथ ये भूमिका निभाऊंगा।
वैसे आपको क्या ऑर्डर्स मिले हैं?
यही कि हिंदुस्तान को आजादी दिलाओ।
हुमा कुरैशी बॉलीवुड में तो कमाल कर ही रही हैं, साथ ही इंटरनेशनल फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रही हैं। हुमा बरतानवी फिल्म साज गुरिंदर चड्ढा की फिल्म पार्टीशन 1947 में अहम किरदार में हैं। कैसे मिली ये फिल्म आपको?
ये प्रोजेक्ट एक्चुअली कास्टिंग डायरेक्टर है सहर लतीफ करके, वो इस फिल्म की कास्टिंग कर रही थी, तो उनका मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसी फिल्म बन रही है और गुरिंदर चड्ढा एक इंडियन एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहती है इसके अंदर। काफी सारे इंटरनेशनल चेहरे इसमें नजर आएंगे, जिलियन एंडरसन, ह्यू बॉनेवल, बट आलिया की कैरेक्टर के लिए शी वॉन्टेड नॉट इवन टू कास्ट एन एक्टर जो इंडियन ओरिजिन का हो मगर बाहर रहता हो, बट एन इंडियन इंडियन फेस, बट शी वॉन्ट टू सी एन ऑडिशन। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा ये तो बहुत कमाल का रोल है, इसको जाने नहीं देना। एंड देन आई सेंट गुरिंदर ऑडिशन टेप, उन्होंने वो टेप देखा और उनको ठीक ठाक ही लगा होगा, तभी शी साइन मी ऑन फॉर द फिल्म, सो दैट्स हाउ आई गॉट द प्रोजेक्ट।
नाम शीला नहीं सुनिधि है। जी हाँ, सुनिधि चौहान जो दिल्ली में पैदा हुई और 13 साल की उम्र में ही अपना पहला गाना गाया। सुनिधि की मुख्तलिफ आवाज और बिंदास अंदाज ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया।
किया रे, किया रे,
हारने के बाद सुनिधि ने टीवी के पहले रियलिटी शो मेरी आवाज़ सुनो की ट्रॉफी अपने नाम की। सुनिधि चौहान को पहली कामयाबी 1999 में फिल्म मस्त के गाने से मिली। गाने के बाद सुनिधि की जिंदगी और उनका करियर तेजी से भागने लगा और सुनिधि बॉलीवुड की कामयाब प्रिंट प्लेबैक सिंगर्स में शुमार होने लगी।
आप सब लोगों का प्यार ही है जो और दुआएं हैं जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बात होती है ब्लेसिंग्स को।
सुनिधि चौहान का दूसरा गाना महबूब मेरे उनके करियर में एक और कामयाब गाना और फिल्म फेयर अवार्ड का सबब बना। सुनिधि चौहान ने ज्यादातर आइटम सॉन्ग्स किए हैं और उन्हें आइटम सॉन्ग्स की क्वीन कहा जाने लगा। तो क्या सुनिधि अपने गानों में वेरिएशंस डालती हैं?
मैं सिर्फ जो जैसा अच्छा लगता है वैसे गाती हूँ, जैसा मुझे महसूस होता है उस वक्त गाना सुन के पढ़ के वैसे गाती हूँ। आवाज़ तो आप चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो आप मिमिक्री आर्टिस्ट होंगे अगर आप आवाज़ चेंज करेंगे। गाने का मूड जो है उस हिसाब से आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, वो चेंज होती है, लेकिन आवाज़ तो नहीं।
सुनिधि चौहान उस वक्त कामयाबियों की बुलंदियों पर जा पहुंची जब फिल्म ओमकारा में उनका गाना बीड़ी जलाई ले सुपरहिट हुआ। यूं तो सुनिधि ने फिल्म धूम का टाइटल सॉन्ग गाकर धूम मचा रखी थी, लेकिन आजकल वो कम ही सुनाई देती हैं। तो क्या कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है?
छुपके तो मैं कुछ भी नहीं करती, बट क्या है कि जब तक कुछ रिलीज नहीं होता है तो आप लोगों को पता नहीं पड़ेगा और दुनिया को पता नहीं पड़ता, तो काम तो चलता ही रहता है। बट क्योंकि इतनी सारी फिल्में बनती हैं, इतने सारे गाने रिकॉर्ड होते हैं, हर किसी का हम हिसाब नहीं रखते। मेरी जहाँ तक बात है, मेरा काम गाना है, मुझे कोई गाना अच्छा लगता है मैं उसे गा देती हूँ, और जब वो आता है लोगों को अच्छा लगता है तो पता पड़ ही जाता है।
सुनिधि चौहान ने मुल्क से बाहर शोज तो किए ही, साथ ही दूसरे कोलैबोरेशंस भी किए हैं और हाल ही में पाकिस्तानी मौसीकार सलमान अहमद के साथ म्यूजिक वीडियो रिदम लॉन्च किया है।
आई थिंक कोलैबोरेशंस आर ऑलवेज ग्रेट, क्योंकि दो अलग कल्चर से, अलग दुनिया से जो लोग आते हैं, जब वो साथ में कुछ काम करते हैं तो वो कुछ स्पेशल होता है, एटलीस्ट अलग तो होता ही है। सो इट वॉज अ लॉट ऑफ फन वर्किंग विद सलमान अहमद।
इंडिया पाकिस्तान के दरमियान टेंशन के इस माहौल में काम करना कैसा लगा?
मैं बस ये कहूंगी कि म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज, और ये भी बात आपने कई लोगों से सुनी होगी। मेरा जो एक्सपीरियंस था सलमान के साथ काम करके, इज अ वेरी नाइस वार्म पर्सन, और हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम दो अलग देशों, बल्कि खैर इंडिया पाकिस्तान अलग है ही नहीं।
बात करते हैं इस हफ्ते की फिल्म की। इस हफ्ते आयुष्मान खुराना और कीर्ति सनन के साथ राजकुमार राव लाए हैं बरेली की बर्फी।
बरेली में रहती है, ब्रेक डांस करती है, इंग्लिश फिल्में देखती है। ओ बेटा, ये तो तुम ही हो
बरेली की बर्फी।
फिल्म क्रिटिक अर्णब बनर्जी हमेशा की तरह बताएंगे कि उन्हें बरेली की बर्फी कैसी लगी।
मुझे तो मजा आया, क्योंकि बरेली की बर्फी एक स्मॉल टाउन की कहानी है। इसके डायलॉग्स, पूरी स्क्रिप्ट जो है बहुत मजेदार है। मुझे खास तौर से राजकुमार राव का काम बहुत अच्छा लगा। आयुष्मान भी बहुत अच्छे हैं, मेन कैरेक्टर उनका है। कृति सेनन बिल्कुल भी छोटे शहर की नहीं लगती है, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आने लगी है अपनी पिछली दो फिल्मों के बाद। आयुष्मान का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, पूरे फिल्म में वो छाए हुए हैं, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि जहाँ राजकुमार राव आते हैं वहाँ वो एक्टर जो है एक स्टार के बदले एक एक्टर जो है वो हावी हो जाता है। मैं बरेली की बर्फी को 5 में से 3 दूंगा।
सुन बे, तुम सुनो बे, आज के बाद गलत टाइम पे फोन किया ना तो ऐसी लात मारेंगे कूल्हे पे डिंपल निकाल देंगे तुम्हारे।
कड़क।
सुनते हैं लोग क्या कह रहे हैं।
बहुत ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि उसमें जो स्पेशली कृति की मैं खुद बड़ी फैन हूँ तो मुझे अच्छी लगी उसकी फिल्म।
तीनों जन मुझे आयुष्मान और कृति और राजकुमार से राजकुमार के परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग है। मतलब बरेली के बर्फी को मैं 4 स्टार दूंगा।
बरेली की बर्फी को मैं 3.5 स्टार दूंगी।
बरेली वाले झुमके पे जिया लल जाए तो मर लचकाए तो लको गिर जाए।
जी कैसा लगा आपको इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंड अप? तब आज की महफिल होती है तमाम। मुझे दे इजाजत और रखे अपना ख्याल। और हाँ, इस प्रोग्राम को बार बार सुने bbcurdu.com पर। खुदा हाफिज।
BBC Bollywood Roundup.